तो मन का डर कैसे दूर हो ये जानना चाहते हैं। महाराज जी एक बात कहा करते थे, कि लोगों को भूत भी परेशान करते हैं, भूत का डर लगता है। और भूत उतारने के लिए जो उपाय करते हैं पंडित लोग, मुल्ला लोग, या बहुत से समझदार लोग, वो किसी ना किसी प्रकार का मंत्र पढ़ते हैं, प्रभु नाम में या उस मंत्र में उस व्यक्ति के प्रति जिस पर भूत सवार है उसके अंदर श्रद्धा पैदा करते हैं, कुछ उसके सामने ही यज्ञ करते हैं, कुछ मंत्र जाप करते हैं, और उसकी बुद्धि में ये विश्वास बिठाने की कोशिश करते हैं कि इसकी कृपा से या इसके प्रताप से ये भूत तुम्हारा भाग जाएगा, और या तो उसी वक्त या कुछ दिनों बाद उन उपायों के द्वारा उसका भूत भाग जाता है। सत्पुरुष का कहना यह है, भूत नाम की कोई वस्तु इस प्रकृति में नहीं है, हो भी नहीं सकती, क्योंकि प्रकृति में कोई वस्तु जब आकार धारण करती है, क्योंकि भूत तो हमको दिखाई पड़ता है, जिसके भी चढ़ सवार होता है उसको दिखाई पड़ता है, अनुभव में आता है, तो सारी प्रकृति की रचना जो आकार रूप है वो पांच तत्व के मिलने से आपस में हुई है, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश आते हैं। और यदि कोई आकार है जिसको हम भूत कहते हैं तो इन पांच तत्वों से ही बना होना चाहिए। जब पांच तत्व से बना है तो जैसे मुझको नजर आ रहा है दूसरों को भी नजर आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिसको भूत दिखाई पड़ता है उसके पास भी दूसरा खड़ा हो तभी उसको नजर नहीं आता। और एक प्रैक्टिकल घटना तो मेरे सामने भी घटी यहीं तपोभूमि में, ये सन 78-79 की बात होगी। यहीं रसोई में एक रसोईया था नयन सिंह, तो दिन में लंच करने के बाद ये जो पीपल का पेड़ है और उसके ऊपर जो प्लेटफार्म बना हुआ है छोटा सा, इस प्लेटफार्म पे दड़ी बिछा के दिन में हम लेट जाते थे। तो नयन सिंह भी मेरे पास से लेटे हुआ था, दोपहर के लगभग 1:30-2 बजे होंगे। तो मेरी आँख खुली, उसी वक्त नयन सिंह की भी आँख खुली। वो मुझसे कहता था कि देखो ऊपर डाल पे बैठा हुआ है, इसके हाथ में कुल्हाड़ी है और देखो ये डाल काट रहा है। मैंने कहा नयन सिंह कहाँ बैठा है? बैठा तो देखो ठक ठक की आवाज आ रही। अब आप देखिए उसकी इंद्रियों से उसको दिखाई भी पड़ रहा है, कान से उसको सुनाई भी पड़ रहा है, उसके मन में भय भी हो रहा है, जिसके बराबर में ही मैं उपस्थित हूं, कुछ भी नहीं, ना कोई आवाज है, ना कोई शक्ल है, ना कोई भय है। कारण क्या था? वो मुझसे कहता था कि बाबूजी रात को लालटेन लेके कोई आता है, वो रसोई के अंदर सोता था डर के मारे, वरांडे में नहीं सोता था। ये मई का महीने की बात है। तो कहता है वो कुंडी खटखटाता है। आप देखिए सारा क्रियाकलाप हो रहा है। तो मैं उससे कहता था नैन सिंह, ये तुम्हारे मन की गफलत है, कोई नहीं आता, ऐसे तुम डरोगे तो हमेशा ही डरते रहोगे। मैं भी तो यहां पर हूं ना, आवाज तो मुझको भी सुनाई पड़नी चाहिए, तुम्हें और क्यों सुनाई पड़ती है। लेकिन जो अज्ञानी मनुष्य होते हैं, जिनके अंदर विचार शक्ति नहीं होती, जो चीजों को उस तरीके से नहीं सोचते हैं जिस तरीके से सब कुछ हमको सोचने को कहते हैं, मनमानी तरीके से सोचते हैं। इसलिए आपने देखा होगा शहरों में लोगों को भूत कम पकड़ता है, गांव के अंदर आम लोगों को पकड़ लेता है, क्योंकि बातें ही वही करते रहते हैं। इसलिए महाजी कहते थे प्रेमी इस प्रकार की चर्चा आपस में नहीं करनी चाहिए, इससे मन में तरह तरह के संकल्प पैदा होते हैं, फिर विचार के लिए परिपक्व होता नहीं है, इसलिए वो संशय जो है फिर वो जो है वो डर के रूप में, भय के रूप में आपको घेर लेते हैं। किसी को स्वप्न के रूप में दिखाई पड़ते हैं, किसी को जो है जागृत में भी दिखाई पड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको सामने दिया, अभी तो प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, तो वो झूठ नहीं बोल रहा है, हम कहें वो झूठ बोल रहा है, उसको वास्तव में दिखाई भी पड़ रहा है, सुनाई भी पड़ रहा है, उसी का उसको भय भी प्रतीत हो रहा है। इसीलिए इसका जो असली इलाज है भय का, वो सत विचार ही है। यदि आप समता विलास के मार्गदर्शन के अनुसार ही यदि सोचना शुरू कर दें, हर चीज का निर्णय करना शुरू कर दें, जो निर्णय वहां दिया हुआ है और सत्पुरुष का निर्णय दिया हुआ है, इसको हम कहते हैं कि ईश्वर का निर्णय है, तो इससे बड़ा सत्य आपके सामने क्या हो सकता है, इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है, इससे बड़ा विचार क्या हो सकता है, जो अटल विचार है, जिसको दुनिया की कोई ताकत, कोई शास्त्र काट ही नहीं सकता। वो विचार पढ़कर यदि मैं उस पर चलने को तैयार हूं, तो भय नाम की चीज संसार में नहीं रह सकती। एक बार की बात और सुनाऊं, क्योंकि मैं यहां अकेला भी आया करता था, जो मुझे लोगों का संग अच्छा नहीं लगता था। मई के महीने में साधना मास होता था, लोग आते थे यहां पर, कभी 5 होते थे, कभी 10 होते थे, कभी 15 भी होते थे। तो मन में जब साधना के प्रति लगन पैदा हुई, तब यही कोशिश करता था कि अकेला स्थान मिले। तो फिर मैं मार्च के महीने में या फरवरी एंड में यहाँ पर आ जाया करता था, तो बिल्कुल अकेला ही होता था, या कभी मेरे साथ कोई एक या दो आ गए तो आ गए। तो एक दिन की बात है, पहले ये बाउंड्री वाल भी नहीं हुआ करती थी यहाँ पर, ना यहाँ कोई बिजली होती थी, ना कोई बाथरूम था, ना कोई टॉयलेट था, बिल्कुल नेचुरल लाइफ थी। फ्रेश होने के लिए भी नदी के पार जाना पड़ता था। तो एक दिन रात को उठे तो मन के अंदर, जैसा कि आपको भय लगता है, मन के अंदर एक भय उठा कि तू अकेला है, या कोई जंगली जानवर आ जाए, क्योंकि आ भी जाते थे पहले, यहीं पर ही इसी बरंडे के बाहर जंगली सुअर आ जाता था। लास्ट वाली कुटिया जो बनी हुई है उसके बाहर भी रात को सुअर चढ़ के जंगली सुअर आ जाता था, वो आदमी पर अटैक कर देता है। तो मन में भय हुआ कि तू अकेला है, अकेलेपन का भी एक भय होता है। तो तुरंत विचार आया, अकेला कहाँ है तू, देख यहां पेड़ पे लंगूर भी बैठे हुए हैं, पक्षी भी बैठे हुए हैं, ये तो डर नहीं रहे हैं, तू डर रहा है, इनसे ज्यादा अकल तेरे पास है, इनसे ज्यादा होशियार तू है, इतने बैठे हुए हैं फिर तू डर रहा है। वो भय गायब हो गया, अकेलेपन का भय वो गायब हो गया। बात तो ठीक है, हाँ इतने सब बैठे हुए हैं, अकेला कहाँ है।
तो असली चीज जो है वो इससे आगे की है कि जिस समय मनुष्य की बुद्धि में विवेक जागृत होता है, और विवेक का जो प्रारंभ है वो यहीं से होता है कि इस देह को चलाने वाली जो सत्ता है उसका नाम ईश्वर है, और वो सत्ता इस देह के अंदर मौजूद है, हर वक्त मौजूद है, और वो सर्वसमर्थ है, और तू जीव है, तू भी इस देह के अंदर ही निवास कर रहा है, तू देह नहीं है, और इस देह की रक्षा वो प्रभु खुद कर रहे हैं, इस देह को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता जब तक प्रभु का हुक्म ना हो। दुनिया के किसी मनुष्य की, किसी जानवर की ये ताकत नहीं है कि बिना ईश्वर के हुक्म के इस देह को कोई नष्ट कर सके, कोई नुकसान पहुंचा सके, हो ही नहीं सकता। उसका हुक्म होगा तब आप पर कोई अटैक करेगा, क्योंकि ये देह प्रारब्ध के अधीन चल रही है, प्रारब्ध के अनुसार ही इसको सुरक्षा भी मिल रही है, इसको खतरे भी मिल रहे हैं। तो उस प्रारब्ध के नियम के अंतर्गत सारे पशु भी बंधे हुए हैं, सारे पक्षी भी बंधे हुए हैं, संपूर्ण प्रकृति उसके हुक्म के अंदर ही चल रही है। भूचाल भी कभी आता है तो उसके हुक्म से आता है, बिना उसके हुक्म के धरती हिल ही नहीं सकती। ये इस प्रकृति का अटल नियम है। तो बताइए, सारी पृथ्वी, सारा संसार जिस पर मैं निवास कर रहा हूं, वो अंतर्यामी प्रभु के हुक्म में चल रही है, भयभीत किससे होता हूं? दुनिया का बड़े से बड़ा दुश्मन मुझ पर वार नहीं कर सकता जब तक कि अंतर्यामी प्रभु का हुक्म नहीं होगा। हिम्मत वहां से आती है, निर्भयता वहां से आती है। बाल न बीका कर सके चक्रवर्त भूपाल, वाणी क्या कह रही है देखो, चक्रवर्ती राजा वो आपका इतना सा भी कुछ नहीं कर सकता यदि उसका हुक्म नहीं हो। एक बार की बात है, जब मैं आईवीआरए में सर्विस करता था, ये बड़ा खुंखार डायरेक्टर भट्ट आ गया वहां पर, और उसके टर्म्स जो थे, उसके जो संबंध थे, वो जो ICAR है उसका प्रेसिडेंट होता था, कैबिनेट एग्रीकल्चर मिनिस्टर सेंटर का, वो उसकी मुट्ठी में था। वो था कौन? लाल बहादुर शास्त्री का बेटा था। अब वो मिनिस्टरों के तो काम करते ही रहता था, सबको खुश रखता था। अब बताइए, ऐसा व्यक्ति कितना निर्भीक होगा अंदर से, कि जहां तक अप्रोच हो सकती है कंप्लेंट की, वहां तक तो सब मेरी मुट्ठी में है, मैं उनको खुश रखता हूं, नेचुरली वो मुझको खुश रखेंगे। तो बिल्कुल निर्भीक था वो। इसीलिए चाहे वो ज्वाइंट डायरेक्टर हो, चाहे वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हो, चाहे प्रिंसिपल साइंटिस्ट हो, सभी डरते थे उससे, चाहे कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर हो, यहां तक कि ये लोकल पुलिस के SP वगैरह भी होते थे, उनको भी वो खुश रखता था। हर तरीके से उसका जाल फैले हुआ था चारों तरफ। तो उसने पहले तो मुझको अपनी पॉकेट में रखने की कोशिश करी कि भाई किसी तरह ये अग्रवाल मेरी मुट्ठी में आ जाए, तो फिर मैं जो भी काम है इंजीनियरिंग के, मैं इसके थ्रू नंबर दो के रास्ते से भी करवा सकता हूँ, कि मेरा अपना करेक्टर था, मैं उसकी मुट्ठी में नहीं आया। ऐसे लोगों की मुट्ठी में कोई ना आए तो आप सोच सकते हैं वो उसको दुश्मन बन जाते हैं। तो अंदर से वो मुझको नुकसान पहुंचाने की हर समय सोचता रहता था कि कैसे इसको नीचा दिखाया जाए। एक बार क्या हुआ, मैं यहां पर उस समय मई के महीने में एक महीने की छुट्टी लेके आता था, मैंने छुट्टी सेंक्शन कराई, एक महीने के लिए यहां आ गया। अब मेरे पीछे जो एयर कंडीशनिंग प्लांट्स थे, कोल्ड स्टोरेज रूम थे जिसमें वैक्सीन स्टोर होती थी, वो प्लांट्स एक एक करके फेल हो गए। अब हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने कंप्लेंट कर दी डायरेक्टर के पास कि अग्रवाल छुट्टी लेके चला गया है, ये प्लांट फेल हो गए हैं। बस उसको मौका मिल गया, उसने तुरंत मीटिंग कॉल करी, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को बुलाया, हेड ऑफ डिवीजन को बुलाया, और भी जो दो एक लोग थे खास खास बुलाया उनको। तो उनको बुला के उसने एक प्रस्ताव पास किया कि इसको इमीडिएटली सस्पेंड किया जाए। खैर मेरे दो तीन दिन ही बाकी बचे थे, मैं खैर बरेली पहुंचा जाऊं तो वहां सबसे पहले तो मेरे पास मेरा सुपरवाइजर आया। घर में जाकर मैं सो ही रहा था क्योंकि रात की यात्रा की थी, तो उसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी कि सर आज आपका सस्पेंशन ऑर्डर इशू होने वाला है। मैंने कि क्यों, तो बोला कि इसी तरह प्लांट फेल हो गए, मुझसे ठीक नहीं हुए। और कोई बात नहीं, उसने ये कहा, मैंने ठीक है तुम चलो मैं आता हूं। तो तुरंत मेरे मन में एक ही थॉट आया, क्योंकि सोच विचार की चीज नहीं थी, ऑटोमेटिकली आया वो, कारण करता तो प्रभु है, उसने यदि सस्पेंड करना है, बदनामी करनी है, उसके हुक्म से होगा, डायरेक्टर में क्या ताकत है। तो कोई बात नहीं, मैं अपने तैयार होकर मैं ऑफिस गया, सब जो एक्शन ले सकते थे एक्शन लिया। उस रात पूरी रात जगे, सारे प्लांट्स वगैरह सब ठीक कराए, अगले दिन से सबको रिपोर्ट भेज दी कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन वो दिन भर वेट करते रहे कि वो सस्पेंशन ऑर्डर आने ही वाला है, वो पीएम डायरेक्टर का आने ही वाला है, वो आया ही नहीं दिन भर, अगले दिन भी नहीं आया वो। अब सब पूरे इंस्टीट्यूट में फैली हुई थी बात, यह है कि अग्रवाल साहब का सस्पेंशन होने वाला है। तो क्या हुआ, अगले दिन मेरे पास तो कुछ लिख के नहीं आया, मेरे बॉस के पास लिख के आया कि आपने इसकी वेरी गुड रिपोर्ट्स लिखी हैं, ये व्यक्ति ऐसा है, इसके कारण इतना, इसी नेग्लिजेंस के कारण इतना नुकसान हुआ है, तो आप इसके अगेंस्ट में रिपोर्ट लिखो। हेड ऑफ डिवीजन जो है वो बोला भाई कि जैसा ये है वैसे मैंने लिखा है, उसी के लेटर पे ही उसने एक्शन लिया था, लेकिन अब वो कहता है कि जैसा है वैसे मैंने रिपोर्ट लिखी इसके बारे में। कोई बात नहीं, उस पर भी नहीं चली। फिर मेरा इमीडिएट टेक्निकल बॉस जो था उसके पास लेटर आया कि तुम इसके अगेंस्ट में कुछ मटेरियल लिख के दो ताकि ये टेक्निकल आधार बन जाए इसकी नेग्लिजेंसी का। अब वो घबराया, मैं उसको खुद ही गाइड करता रहता था, तो उसकी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इनके अगेंस्ट में क्या लिखूं। तो फिर उसकी डांट पड़ी कि भाई तुम जल्दी लिख के भेजो, और उसकी हिम्मत ना हो, बेचारा वो घबराए, साउथ इंडियन था। तो मैंने कहा चलो मैं तुमको लिखवाता हूँ। मैंने उसको लेटर डिक्टेट किया और अपने ही अगेंस्ट में एक जो है वो माइनर सी नेग्लिजेंसी भी नोट करवाई उसको, समझ नहीं, मुझे मान था इसके आधार पर कोई सस्पेंशन ऑर्डर तो बनता ही नहीं, लेकिन उसको बचाने के लिए नोट करा के भेज दिया लेटर। आपको बताऊं मैं कि हफ्ता बीता, दो हफ्ते बीते, तीन हफ्ते बीते, मेरे पास कोई लेटर नहीं आया, ना डायरेक्टर ने मुझे बुलाया। और किसी की हिम्मत ही ना हो एक्शन लेने, मैं अंदर सोच रहा हूं इतना खूंखार डायरेक्टर, इतना पावरफुल, मतलब जो आईसीआर का प्रेसिडेंट जिसकी मुट्ठी में हो, क्योंकि भ्रष्ट लोगों के भ्रष्ट जो है वो मित्र ही होते हैं, तो आपस में मित्रता से सकते। देखिए इतना पावरफुल एडमिनिस्ट्रेशन होने के बाद मेरे अगेंस्ट में वो एक लेटर भी इशू नहीं कर सका, उसको मैं हिम्मत ही नहीं। अब बताइए ये क्या मेरी पावर से हो रहा है? मेरी पावर से नहीं हो रहा, मेरा प्रारब्ध नहीं है। मेरे प्रारब्ध में यदि कष्ट झेलना होता, अपमान झेलना होता, तो वो ऑर्डर इश्यू होता, मेरी गलती ना करने के बाद भी होता। इसीलिए अंदर आपका विश्वास क्या है, और वो विश्वास बिना प्रभु के मार्ग पर चले हुए नहीं आ सकता। केवल शास्त्र पढ़ के विश्वास नहीं आ सकता, कोई चाहे कि मैं किताबें पढ़ के विश्वास कर लूं, आएगा ही नहीं। उसके अनुसार जो जीवन जिएगा उसके अंदर इस प्रकार का फेथ आ सकता है। क्यों आ सकता है? क्योंकि वो शास्त्र के वचन जो पढ़ रहा है, वहां जो निर्णय वो सीख रहा है, उसके अंदर ये फेथ पहले बनता है कि वो इस देह के अंदर खुद मौजूद है। और मुझको पता है मेरी इतनी प्रिय देह है कि मैं इस देह को नहीं चला रहा हूं, मैं तो आंख बंद करके सो जाता हूं। इस देह का रात में 6 घंटे 8 घंटे क्या होता है? मेरे पास खाना हजम होगा नहीं होगा मेरे हाथ में है क्या? श्वास आएगी या नहीं आएगी, दिल धड़केगा नहीं धड़केगा मेरे हाथ में है क्या? मैं कर रहा हूं क्या? तो वो उसी प्रकार सोचता है जिस प्रकार वाणी निर्णय दे रही है, जिस प्रकार गीता निर्णय दे रही है, जिस प्रकार संत विलास निर्णय दे रही है। तो हर जगह यही बात लिखी हुई है कि इस सृष्टि का रचयिता, इस सृष्टि का पालन करता, इस सृष्टि को विध्वंस करने वाला, डिस्ट्रॉय करने वाला वो ईश्वर खुद ही है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा करने वाला, पालन करने वाला और नष्ट करने वाला वो प्रभु स्वयं ही है। तो सारी सृष्टि जिसके हुक्म में है, तो एक इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर स्वतंत्र कैसे हो सकता है? वो स्वतंत्र कैसे हो सकता है? इसका मतलब ईश्वर से हटके कोई शक्ति है पैदा हुई है वो, और स्वतंत्र है वो। तो इसलिए डिफेक्ट मेरी सोच में है। तो अंदर से जिसके अंदर ईश्वर भक्ति है और जो शास्त्रों के मर्म को जिसने समझा है, वो शास्त्र के निर्णय के अनुसार विचार करता है, उसके अनुसार अपना फेथ डेवलप करता है, इसीलिए अंदर से वो निर्भीक होता है। नहीं तो रावण जैसा बलशाली व्यक्ति हनुमान अकेला चला जाता लंका में। हनुमान तो खुद ही कहता था मेरे पास तो शक्ति नहीं, लेकिन जब अपने गुरु राम की याद आती थी, अपने प्रभु राम की याद आती थी, कहता है तो राम तो सारे जगत को चलाने वाले हैं, फिर मुझको क्या भय? रावण को मारेंगे तो वही मारेंगे, रक्षा करेंगे तो वही करेंगे। जब राम की याद आती थी तो सारी शक्ति याद आ जाती थी। इसलिए हनुमान का निर्णय एक ही था कि राम समुद्र तो आपने लंघवाया, आपकी शक्ति से समुद्र लाऊंगे, मैंने थोड़ा लाना कोई। तो जिसके अंदर भक्ति है उसके अंदर ईश्वर विश्वास होता है, और ईश्वर विश्वास का मतलब है ईश्वर के द्वारा जो बात भी, जो वाणी भी, जो शास्त्र भी प्रकट हुआ है, उस सब पर उसका गहरा चिंतन होता है, इसीलिए उसके अनुसार उसकी सोच बन जाती है। बताइए समता विलास, पूरे समता विलास पढ़ के देख लीजिए आप, कहीं भय नाम की वस्तु है उसमें? हाँ ये तो जरूर लिखा हुआ है कि भय से भाव पैदा होता है, भाव से भक्ति पैदा होती है, लेकिन वो भय कौन सा है? वो भय यदि मैंने शास्त्र के मार्गदर्शन के अनुसार, गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार चिंतन नहीं किया, अपनी विचारधारा नहीं बदली, तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए भाव पैदा होता है, भाव कम होता है अपनी उन्नति का विचार, तो भय से भाव पैदा होता है। और महाराज जी दूसरे भय की कौन सी बात करते हैं, मौत का भय। उसका मतलब मौत से डरना नहीं होता, मौत से भय का मतलब है मौत का किसी वक्त भी आ सकती है, जीवन बड़ा थोड़ा सा है। और इस सारे संस्कारों का मैंने अपने परिवर्तन करना है, स्वभाव का परिवर्तन करना है, सतोगुणी संस्कार बनाने हैं मैंने, सतोगुणी स्वभाव बनाना है मैंने, तो मैं लापरवाह कैसे हो सकता हूं, एक दिन भी जिंदगी का कैसे बर्बाद कर सकता हूं। तो इसलिए वो उसको मौत की याद की बात कही जाती है, मौत से डरने की बात नहीं की जाती है। मौत का भय का मतलब है कि मौत किसी वक्त भी आ सकती है, जीवन क्षणिक है, इसलिए एक दिन भी तूने बर्बाद नहीं करना है। आज का जो ईश्वर का प्रोग्राम है वो पूरा करके ही छोड़ना है तुम्हें, कल को पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा मौका। तो संस्कार, संसार के एक भोगों के संस्कार मैंने बनाए, आज के दिन भोग भोग के तो क्या दुर्दशा होगी मेरी, मेरे मन की चंचलता कितनी बढ़ जाएगी। इसलिए हर दिन वो पाप से बचता है और हर दिन पुण्य की कमाई करने की कोशिश करता है, प्रभु की याद और परोपकारी जीवन व्यतीत करने की कोशिश करता है। तो उसके अंदर हर वक्त जो है वो शास्त्रों का चिंतन बुद्धि में घूमता रहता है। अब बताइए ऐसा प्राणी किसे डरेगा, कौन सा भय उसके मन में होगा। तो भयभीत हम तभी होते हैं, 24 घंटे हमारे मन में संसारी बातें घूमती हैं, लोगों की बातें घूमती हैं, शास्त्रों की बातें नहीं घूमती। दुनिया की याद करते हैं, कारोबार की याद करते हैं, नुकसान की याद करते हैं, लाभ की याद करते हैं, भविष्य की प्लानिंग करते रहते हैं, प्रभु की याद नहीं घूमती। तो जीवन ही हमारा इस तरह का है कि वहां भय होना स्वाभाविक है, क्योंकि हर चीज आप इच्छा के अनुकूल करना चाहते हो, हर इच्छा आपकी पूरी होना चाहिए, हर कर्म का फल आपके मुताबिक मिलना चाहिए, लेकिन आपका अनुभव बताता है ऐसा होता नहीं है। हर चीज अनिश्चित है, डॉक्टर के पास भी जा रहा हूं, दवा भी वो दे रहा है, तब भी अनिश्चय है, पता नहीं, दे तो रहा है, दवा खा भी रहा हूं, रोग ठीक होगा या नहीं होगा पता नहीं, कहीं दवा ही तो रिएक्शन नहीं कर जाएगी, ये नया रोग पैदा कर देगी, कुछ पता नहीं मुझे। तो संसार में जितने भी कर्म कर रहा हूं, जैसा भी जीवन है, हर चीज अनिश्चित है। जब हर चीज अनिश्चित है और मन के अंदर एक ही इच्छा पल रही है कि जैसा चाहता हूं वैसा रिजल्ट मिलना चाहिए, तो आपके अंदर भय पैदा नहीं होगा, आपका पूरा जीवन तो अनिश्चय की हालत में गुजर रहा है। तो इसीलिए जिसके जीवन का आधार ईश्वर बना ही नहीं है, वो तो भय में ही जिएगा, चिंता में ही जिएगा, ये स्वाभाविक है, कोई नहीं बच सकता है। बड़ा पहलवान भी आपको दिखाई पड़ जाए ना, बड़ा हृष्ट पुष्ट है, 10 लोगों को उठा के फेंक देगा, ये मन से वो भी भयभीत रहता है, उसके मन की हालत देखो, बड़ा भयभीत रहता है। पतले से महाराज जी क्या शरीर में था उनके, 20 साल तक अन्न तक ग्रहण नहीं किया उन्होंने, एक वक्त दूध में पत्ती डाल के चाय पीते थे, एक वक्त। वो पतला सा शरीर तो नहीं भयभीत होता था। अरे जब बालक थे, जब 9 वर्ष की आयु थी, तो रात जंगल में बिताते थे, वो पीर ख्वाजा जंगल, जहां दिन में भी गांव वाले जाने से डरते थे, कहते थे यहां तो भूत बसते हैं, दिन में भी गांव वाले नहीं जाते थे घने जंगल में। तो 9 वर्ष का बालक जंगल के अंदर जाके समाधिस्थ रहता था, कहां है। अरे शरीर तो हमसे भी कमजोर था उनका, यदि शारीरिक दृष्टि से देखें तो क्या चीज थी उनके अंदर। मेरे लिए तो एक ही चीज इस शरीर में मौजूद है, जिसको मन कहते हैं। इसी शरीर में मन मौजूद है, ये तो पता है मुझे, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली ईश्वर सत्ता मौजूद है ये मुझे नहीं पता। और गुरु का मन पहले ही मर चुका था, संसारी को याद ही नहीं करता था, कुछ नहीं चाहिए था उसको, कोई अटैचमेंट नहीं, मन में कोई राग ही नहीं, जब राग नहीं तो द्वेष भी नहीं। उसके अंदर वो चेतन सत्ता, वो ईश्वर हिलोरे मार रहा है, उसके प्रेम में इतने मग्न है कि समाधि लगी हुई, बाहर का होश ही कोई नहीं, अपने तन का होश नहीं है, जंगली जानवरों का क्या होश होगा। वो उस हुक्म में जी रहा है जिसको ईश्वर का हुक्म कहते हैं, जिसके कानून के आगे, जिसके हुक्म के आगे पूरी प्रकृति चल रही है। तो 9 वर्ष का बालक नहीं डर रहा है, मैं 40 साल का 50 साल होकर इस तपोभूमि में रह के डर रहा, जहां बाउंड्री वाल भी खींची हुई चारों तरफ और लोग भी रह रहे, अकेला भी नहीं। तो कारण यही है कि मेरे मन में प्रभु बसा नहीं, वो एक केवल विचार है, प्रभु एक कहानी है। वहां भी कभी कभी डाउट में आता हूं, कहते तो हैं, पढ़ा तो है, सुना भी है, पता नहीं है नहीं। इसीलिए पैसे की जितनी आवश्यकता मैं फील करता हूं, ईश्वर की आवश्यकता फील नहीं करता। मेरा दिल दहल जाता है यदि पता लग जाए कि मेरी सर्विस छूट जाएगी या बिजनेस फेल हो जाएगा, ईश्वर छूटा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि वाणी क्या कह रही है, मानुष जन्म सुफल हो गए जब प्रभु दाता चित्त आए, प्रभु के सिमरन कारण ये दुर्लभ जीवन पाए। वाणी तो ये कह रही है, और मैं क्या कर रहा हूं, मेरे जीवन की सफलता अच्छा पैसा कमाई में है, अच्छी एजुकेशन प्राप्त करने में है, मेरे बच्चों के जीवन की सफलता, ये मेरी बुद्धि का निश्चय है। तो सारी जिंदगी डर रही है आपने, आपने उस नाव पर पैर रखा हुआ है जिसमें पहले से एक छेद है, अब कितनी देर में डूबेगी वो टाइम का आप गिनती कर सकते हो, डूबा तो है उसने। तो जिंदगी तो आपकी बर्बाद होनी ही होनी है, जिसके जीवन में ईश्वर ही नहीं उसकी जिंदगी, जिसको सफल जीवन भी कोई संसारी कहे, वो तो बर्बादी का जीवन है, क्योंकि इतने पाप कमा लिए हैं उसने और इतने विकार उसके बढ़कर बढ़ चुके हैं कि अब जो डेथ पॉइंट पे बैठा हुआ है वो, अब अगला जन्म जो मिलने वाला है किस दुर्दशा में जिएगा वो, उसको पता है इस बात का। सारी जिंदगी तो अपने आप को शरीर समझता रहा, अरे शरीर होता तो कोई बात नहीं थी, जल के खत्म हो जाता, कहानी खत्म हो जाती, कितने भी पाप कर लो क्या फर्क पड़ता। लेकिन समस्या यह है कि मैं जीव हूं, मैं शरीर हूं ही नहीं, शरीर तो लोग जला देंगे, मैं बच जाऊंगा, मेरा मन भी बच जाएगा, मेरा कर्मफल, मेरा स्वभाव सब मन के अंदर सुरक्षित है, उसी के अनुसार मुझको अगली देह, अगले लोगों का संग, संसार चारों तरफ का उसी प्रकार का मिलेगा जिस प्रकार का मैं पात्र हूं। तो ये जन्म में, तो इस जन्म में तो मैं 1 घंटा भी मैंने लापरवाही से व्यतीत नहीं करना था, 1 घंटा भी होश में रहकर व्यतीत करना था, कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, पाप तो नहीं हो रहा है, शास के विरुद्ध कोई कर्म तो नहीं हो रहा। इसीलिए बड़ा अलर्ट होकर मानव जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है, और बुद्धि का इतना विकास होना ही चाहिए मेरी कि शास्त्र का रोज स्वाध्याय करूं, उनको समझने के लिए सत्संग का श्रवण करूं, किसी योग्य व्यक्ति का संग करूं, अच्छी संगत धारण करूं, खाने पीने पे व्यवहार में संयम रखूं, कमाई इतनी करने की कोशिश करूं कि मर्यादा का जीवन व्यतीत हो सके, मेरा भी परिवार का भी। डिमांड तो घर वाले बहुत करेंगे, उन्हें आपके जीवन की फिक्र नहीं है, अपने जीवन की फिक्र मैंने खुद करनी है। लेकिन जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं पारिवारिक जीवन की, उसको पूरी करने के लिए पुरुषार्थ करना, पैसे की कमाई करनी है, तो बैलेंस्ड जीवन व्यतीत करना होता है। महाजी कहते हैं, प्रेमी स्वार्थ और परमार्थ की समय सीमा बांधकर स्वार्थ में भी समय दो, परमार्थ में भी समय, लेकिन लक्ष्य क्लियर होना चाहिए कि जीवन का गोल उस ईश्वर की प्राप्ति है। परमार्थ का मतलब ही होता है परम अर्थ, परम अर्थ का मतलब होता है हाईएस्ट गोल। तो परमार्थ का मतलब है वो हाईएस्ट गोल क्या है, इस जीव ने अंतर्यामी उस जीवन रूप ईश्वर की खोज इस देह में ही करनी है। और खोज का रास्ता क्या है, वो सत्विचार है और सत्सिमरन है। तो शास्त्र का स्वाध्याय करना है, अपनी बुद्धि को पवित्र करने के लिए, बुद्धि को ईश्वर के प्रति जागरूक रखने के लिए, विवेक धारण करने के लिए। इसीलिए वो सारे कार्य की जरूरत है जो महाराज जी ने पांच नियम के रूप में दिए हैं हमको, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्सिमरन। तो इसके अनुसार जीवन व्यतीत करें तो किसी भी प्रकार का भय आपके अंदर रह नहीं सकता, ये निश्चित बात। ओम ब्रह्म सत्य।